पृष्ठ संख्या 182, बर्लिन संकट और जर्मनी का विभाजन। बर्लिन संकट 1948 आरंभ होते होते ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य ने जर्मनी के अपने तीनों अधिकृत क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी जर्मनी का पृथक राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। इन क्षेत्रों को यूरोपीय पुनरुद्वार कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के अधीन भी लाया जा रहा था। इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य युद्ध से तबाह पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भारी वित्तीय सहायता सुलभ कराने जा रहा था। बर्लिन नगर को जो सोवियत संघ क्षेत्र में पड़ता था, शेष जर्मनी की तरह चार क्षेत्रों में बांट दिया गया था। तीनों पश्चिमी ताकतें पश्चिमी बर्लिन को पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा मानती थी, जिसे एक अलग राज्य के रूप में संगठित किया जा रहा था। सोवियत संघ इसके खिलाफ था। जून 1948 में उसने पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन को जोड़ने वाली उस सड़क को बंद कर दिया जो सोवियत संघ से होकर गुजरती थी। पश्चिमी जर्मनी की नाकेबंदी का उद्देश्य पश्चिमी ताकतों को बर्लिन पर सोवियत दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर विवश करना था। इससे लड़ाई का खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि पश्चिमी देश पश्चिमी बर्लिन से हटने को तैयार नहीं थे, किंतु वे लगातार बाहरी रसद की आपूर्ति के बिना पश्चिमी बर्लिन पर कब्जा जमाए रख पाने में असमर्थ थे। पश्चिमी मित्र देशों ने पश्चिमी बर्लिन को वायु मार्ग में बड़ी मात्रा में रसद पहुंचाकर इस स्थिति का सामना किया। यह नाकेबंदी लगभग 11 महीने तक चली। इस दौरान पश्चिमी मित्र देशों ने वायु मार्ग से विमानों की 2,75,000 से अधिक उड़ानों के द्वारा पश्चिम बर्लिन में खाद्य सामग्री और ईंधन पहुंचाया। इस प्रकार युद्ध का खतरा टल गया। सोवियत संघ ने मई 1949 में नाकेबंदी हटा ली। इस बीच पश्चिमी देशों का एक नया सैन्य गठबंधन कायम हो गया। अप्रैल 1949 में संयुक्त राज्य पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लुक्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल और इटली तथा आइसलैंड और कनाडा ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का गठन किया। इस गठबंधन के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों में तथा कथित रूसी विस्तारवाद को रोकने तथा साम्यवाद को सीमित करने के लिए एक व्यापक शस्त्रास्त्रीकरण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। अगले 6 वर्षों तक संयुक्त राज्य ने यूरोप के नाटो देशों को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता दी। 1952 में यूनान और तुर्की को भी नाटो का सदस्य बना लिया गया। जर्मनी में दो राज्य। मई 1949 में जर्मन संघीय गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी बॉन को बनाया गया। पश्चिमी जर्मनी का फिर से शस्त्रीकरण करना आरंभ कर दिया गया। यद्यपि उसे 1955 में नाटो का सदस्य बनाया गया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 4 साल के अंदर ही पश्चिमी देशों द्वारा एक सैनिक गठबंधन कायम करना एक बड़ी घटना थी, जिससे पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच की तनातनी और बढ़ गई। पश्चिमी जर्मनी के गठन के कुछ माह बाद ही जर्मनी का सोवियत अधिकृत क्षेत्र भी एक पृथक राज्य बन गया, जो जर्मन जनवादी गणराज्य, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाया। इस प्रकार 1949 के अंत तक जर्मनी का विभाजन औपचारिक रूप से पूरा हो गया और जर्मनी के दो पृथक राज्य कायम हो गए, जो एक दूसरे के शत्रु बने रहे। जर्मनी का यह विभाजन 40 साल से अधिक समय तक कायम रहा। आखिर 3 अक्टूबर 1990 को दोनों का एकीकरण होने के साथ ही यह विभाजन समाप्त हो गया। 1955 में जब पश्चिमी जर्मन को नाटो का सदस्य बनाया गया, तो सोवियत संघ तथा साम्यवादी दलों द्वारा शासित पूर्वी यूरोप के देशों ने एक सैनिक गठबंधन कायम किया जिसे वर्सा संधि, वर्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नाटो देशों की तरह वर्सा गठ संगठन के देशों की अपनी एक संयुक्त कमान थी। इस बीच शीत युद्ध, जो आरंभ में यूरोप तक ही सीमित था, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका था और नाटो के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में भी संयुक्त राज्य की अगुवाई में अन्य सैनिक गठबंधन कायम हो चुके थे। सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य सबसे प्रबल सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। 4 वर्षों तक वह दुनिया का अकेला ऐसा देश था जिसके पास परमाणु अस्त्र मौजूद थे। परमाणु अस्त्रों पर एकाधिकार होने से उसमें निर्विवाद रूप में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने की भावना आ गई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने से पहले ही यह स्पष्ट हो चला था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त होने जा रहा है, इसलिए यह युद्ध की अंतिम कार्रवाई होने की तुलना में युद्धोत्तर दुनिया में संयुक्त राज्य की सैनिक सर्वोच्चता का प्रदर्शन था। इस मत के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति का स्वामी होने के बल पर दुनिया को आतंकित करके उसे अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहता था। लेकिन 1949 में सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण करने के साथ ही परमाणु अस्त्र का संयुक्त राज्य का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसके बाद अधिकाधिक विनाशकारी हथियारों का विकास हुआ जो शीत युद्ध का भयावह परिणाम था। इन हथियारों से अंतर्राष्ट्रीय तनावों और संघर्षों में और अधिक वृद्धि हुई। 1940 का दशक समाप्त होते होते शीत युद्ध विश्व के अन्य भागों में भी फैलने लगा था। जासूसी का आतंक। सोवियत संघ ने नाटो के गठन के 5 महीने के बाद सितंबर 1949 में परमाणु बम का सफल परीक्षण करने की घोषणा की। यह संयुक्त राज्य के सैनिक प्रभुत्व पर करारी चोट थी। यह समाचार सुनकर संयुक्त राज्य स्तंभित रह गया और इसका इस्तेमाल उसने साम्यवाद के हौवे को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया। अगले कुछ वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे नास्तिक साम्यवाद के उद्भ्रात्य भय का अतिरेक कहा गया है। अमेरिकी सरकार ने कुछ नेताओं, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ एक सदस्यों तथा जनसंचार माध्यमों के एक हिस्से से सोवियत एजेंसी द्वारा संयुक्त राज्य के प्रशासन में पैठ बनाकर उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कहानियां प्रचारित करके और भी घबराहट पैदा कर दी। यह कहा जाने लगा कि परमाणु बम विकसित करने में सोवियत संघ को सफलता केवल इसलिए मिली क्योंकि उसके जासूसों ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के परमाणु रहस्यों की जानकारी हासिल कर ली थी। अनेक वैज्ञानिकों तथा परमाणु बम परियोजनाओं से संबंध अन्य लोगों की वफादारी पर संदेह व्यक्त किया गया। उनमें से कुछ पर मुकदमे चलाकर उन्हें लंबे कारावास देने के अतिरिक्त मृत्यु दंड की भी सजा सुनाई गई। उस समय के कुछ अग्रणी वैज्ञानिकों की राय थी कि यद्यपि जासूसी के आरोपों में सच्चाई थी और कुछ परमाणु रहस्य सोवियत संघ के हाथ लग गए थे, तथापि सोवियत संघ की परमाणु बम बनाने की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता में उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सोवियत वैज्ञानिकों ने बम बनाने का काम लगभग उसी समय शुरू किया था जब संयुक्त राज्य के वैज्ञानिक इस काम में जुटे हुए थे। कई प्रतिष्ठित लोगों ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र थे और मित्र देशों के बीच रहस्यों के आदान प्रदान को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। तथापि जासूसी के हौवे को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसका प्रयोग सोवियत संघ के प्रति भय और शत्रुता का वातावरण बढ़ाने के लिए किया गया। चीन में साम्यवाद की विजय। इसके शीघ्र बाद संयुक्त राज्य और उसके मित्र राष्ट्रों को एक और बड़ा आघात लगा। 1 अक्टूबर 1949 को चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य ने चीन को जापान के खिलाफ लड़ने के लिए चियांग काई शेक की सरकार को विपुल मात्रा में शस्त्र अस्त्र प्रदान किए थे। चीन में गृह युद्ध चल रहा था जब चियांग काई शेक की सरकार को साम्यवादियों के खिलाफ लड़ने के बजाय जापान के विरुद्ध संघर्ष को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया गया, तो चीन में गृह युद्ध कुछ काल के लिए टल गया। लेकिन चियांग काई शेक की सरकार तथा चीनी साम्यवादी दोनों ही वास्तव में जापान के खिलाफ एक होकर नहीं लड़े, बल्कि युद्ध के दौरान केवल इस बात का थोड़ा बहुत दिखावा किया जाता रहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जुलाई 1946 में गृह युद्ध से फिर शुरू हो गया। 3 साल से कुछ अधिक समय की अवधि में चियांग काई शेक की सेना के पैर उखड़ गए। हालांकि संयुक्त राज्य से उसे बराबर अत्याधुनिक हथियार मिलते रहे, चियांग काई शेक अपनी बची खुची सेना को लेकर ताइवान फार्मूसा भाग गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद जापान से मुक्त कराया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में साम्यवादी विजय से साम्यवाद का भय और भी बढ़ गया। चीन से साम्यवादी शासन को उखाड़ फेंकना और चीन के प्रमुख भूभाग में चियांग काई शेक की सरकार को पुनः प्रतिष्ठित करना संयुक्त राज्य की नीति का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। लगभग 2 दशकों तक संयुक्त राज्य चीन सरकार को मान्यता देने से इनकार करता रहा। अपने मित्र देशों के समर्थन से उसने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बाहर रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता और सुरक्षा परिषद में उसकी अस्थायी सदस्यता की वजह से चियांग काई शेक की सरकार को बनाए रखा गया, वह भी केवल संयुक्त राज्य द्वारा दी गई सैनिक सहायता के बल पर। वह भी केवल संयुक्त राज्य ने चियांग काई शेक की सरकार को शस्त्र अस्त्र प्रदान करने और चीन के प्रमुख भूभाग पर आक्रमण करने के लिए तैयार करने का सिलसिला जारी रखा। साम्यवाद के भय के कारण संयुक्त राज्य ने एशियाई देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और शीत युद्ध एशिया में भी फैल गया। एशिया की कई सैनिक झड़पों और लड़ाइयों में भी संयुक्त राज्य शामिल रहा। वह हर समय एवं हर समस्या को शीत युद्ध के दृष्टिकोण से देखने लगा। नतीजा यह हुआ कि वह उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों तथा अनेक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्रों के खिलाफ भी खड़ा हो गया जो अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने और विश्व के मामलों में अपनी स्वतंत्र भूमिका स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। कोरिया की लड़ाई वह पहली लड़ाई जिसमें संयुक्त राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। कोरिया की लड़ाई थी जो 1950 में आरंभ हुई थी। जापान की पराजय के फलस्वरूप जब कोरिया पर जापानी अधिकार का अंत हुआ तो कोरिया को 2 अधिकृत क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरी क्षेत्र सोवियत संघ के अधीन और दक्षिणी क्षेत्र संयुक्त राज्य के अधीन रहा। 38 अक्षांश को दोनों की विभाजक रेखा निर्धारित किया गया। अगस्त 1948 में दक्षिण कोरिया ने स्वयं को कोरियाई गणतंत्र घोषित कर दिया और सितंबर 1948 में उत्तर कोरिया ने स्वयं को जनवादी गणतंत्र होने की घोषणा कर दी। सोवियत सेना ने उत्तर कोरिया को सितंबर 1948 में और अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया को जून 1949 में छोड़ दिया। उत्तरी कोरिया को कोरियाई साम्यवादी दल का नेता किम इल सुंग सरकार का प्रमुख था और दक्षिणी कोरिया का प्रधान एवं दक्षिण पक्षी राजनीतिज्ञ सिंगमन री था। दोनों में से किसी भी सरकार को कोरिया का विभाजन स्वीकार नहीं था और दोनों ने दावा किया कि उनका लक्ष्य अपने देश का पुनः एकीकरण करना था। जून 1950 में दोनों हिस्सों के बीच लड़ाई छिड़ गई और दोनों ने एक दूसरे को लड़ाई के लिए जिम्मेदार बताया, लेकिन सामान्यतया यह माना जाता है कि लड़ाई उत्तर कोरिया ने शुरू की। सुरक्षा परिषद की भी यही राय थी, जिसने उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया को मदद करने का फैसला किया था। लेकिन स्मरणीय है कि सुरक्षा परिषद ने दक्षिण कोरिया को मदद देने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि सोवियत संघ साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल न किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का बहिष्कार कर रहा था। 2 महीनों के अंदर उत्तर कोरिया की सेना लगभग पूरे दक्षिण कोरिया पर काबिज हो गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पर उत्तर कोरिया का अधिकार लड़ाई छिड़ने से पहले 3 दिनों के अंदर ही हो गया। तथापि संयुक्त राज्य की थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया और उत्तरी कोरिया की सेनाओं को पीछे धकेल दिया। अब संयुक्त राज्य की सेना उत्तर कोरिया की भूमि पर लड़ रही थी। इसी समय चीनी सेना भी लड़ाई में उतर आई और अमरीकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 1951 के मध्य से लड़ाई में गतिरोध उत्पन्न हो गया। युद्ध विराम के लिए वार्ता चलने लगी जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1953 में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हो गए जिससे देश में एक बार फिर लड़ाई से पहले की स्थिति कायम हो गई। इस लड़ाई में 1,42,000 अमरीकी सैनिक और संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसमें भाग लेने वाले देशों के 17,000 सैनिक मारे गए। अनुमान है कि इस लड़ाई में लगभग 30 से 40 लाख कोरियाई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरिया की लड़ाई 1945 के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी और इसमें पहली बार संयुक्त राज्य ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था और बड़ी संख्या में उसके सैनिक हताहत हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी अवधि के दौरान मरने वाले अमरीकी सैनिकों की संख्या लगभग 3 लाख थी। हताहतों की भारी संख्या होने के बावजूद यह याद रखना होगा कि यह एक अस्थानीय लड़ाई थी। इस बात का पूरा खतरा था कि यह आम लड़ाई में ना बदल जाए। कोरिया की लड़ाई में संयुक्त राज्य की सेना का नेतृत्व करने वाला जनरल मैकार्थर चीन पर आक्रमण करना चाहता था। इस लड़ाई में संयुक्त राज्य द्वारा परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का खतरा भी उत्पन्न होने लगा था।